इस मैया से जीत कर रहे हैं, मैया हमें कोई कथा सुना, वो कोई कथा सुना रहे हैं। इतने में कृष्ण की नजर पड़ी चांद पर। अभी कृष्ण के अभी दो दांत आगे के केवल निकले हैं, दो दांत, और इतना सुंदर उनका मैया से कर रहे हैं और मैया उनकी कथा सुना रही हैं और उनका सुंदर मुखारविंद देख रही हैं। यशोदा जी के हृदय में कैसी अद्भुत अद्भुत लहरें उठ रही हैं, बात चल जा रही है। कभी चुम्बन करती हैं, कभी गोदी में लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, यानी सौभाग्य का ठिकाना है। ब्रह्मा जी को ऐसा मिला कभी न, शंकर जी को या लक्ष्मी जी को या कौन भक्त को ऐसे कथा और लोगों कृष्ण ने अपने ऐसे हाथ बिखराए चंद्र की तरफ में। बार बार दिखला रहे हैं, अब उनका ध्यान दूध पीने से या कथा सुनने से हट गया। उधर ही अब देखने कहा जी यशोदा जी पूछती हैं मैया, देखा क्या चाहिए, तो वो चांद की तरफ, अरे मक्खन ले रहा है मक्खन, बस वही जो कुछ कहो वो बस वही इशारा कर। और सुनक गए, सुनकना मैंने सुनल से सुनकना कोई भी कारण नहीं है, वो करने लगे और ऐसे ऐसे हाथ मलने लगे। वो शोभा और निराली यशोदा जी वो अघाती नहीं है, वो कहते बेटा वो मक्खन नहीं लेना चाहिए। भैया क्यों नहीं लेना चाहिए, ये इसमें बीस लग गया, कैसे बीस लग गया, तो देवता दानव इसको समुद्र मंथन कर रहे थे। बड़े आश्चर्य से सुनने लगे, कान लगा कर छोटा सा, मां उनको पता नहीं, अच्छे उनको पता है कि नहीं,
और सब भूल गए हैं
और बड़े उत्सुक होकर के मैया को बेटा उनका मामा के घर की बातें सुना रहा है। उनको सब पता है, सभी सुन रहे हैं, उसने उनको याद ही नहीं। वो कह रही है इसको लोग खाते नहीं, तुम्हारे खाने योग्य नहीं, क्यों, तो देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर अमृत पीने के लिए उसमें अमृत, किंतु पहले ही निकल गया भी मैया, क्या हुआ, हूं हूं करने लगे। उन्होंने कहा शंकर जी को बुला लिया, भोले भाले शंकर जी, और उनको वो जिसको जब जलने लगा तो शंकर को दे दिया और शंकर जी ने इसको गले में रख लिया। भैया गले में क्यों रख लिया, तो इसलिए रख लिया कि उनके हृदय में ठाकुर जी है ना, तो भी वहां जाएगा तो उनको जला देगा, उनको कष्ट होगा, इसलिए गले में रख लिया, इसलिए इनका नाम। अच्छा भैया और सबको क्या हुआ, तो इसी तरह से मंथन करते 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 ये माखन का बड़ा भारी अंत में लौंदा निकला, गोलाकार निकला ये चीज। फिर वो जो बीच का पहले जो निकला था उसका छीटा इस पर पड़ गया, इसलिए बीच में वो काला देख रहा है ना, वही बीच है, इसलिए देवता दानव दोनों में से किसी ने नहीं लिया, बेटा तुम ही लो। ऐसे करते हुए और थपकी देते देते कृष्ण जी की क्या यशोदा जी को नींद नहीं आ रही, कितना सुंदर मुखड़ा, कितना भाव उनके अंदर में बात्सल्य भाव, यदि सो जाएंगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा, इसी चिंता में डूब रही हैं और तरह तरह की बातें याद आ रही हैं कृष्ण संबंधी। इतने में नंद बाबा यह रात, भाई अभी तो कोई नहीं, तू ये धीरे से बोलिए बच्चा जगने जाए और फिर वहाँ धीरे 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 वहाँ से उठ करके बातचीत कर कृष्ण के सुन कैसी सो न तो नींद आती है और सो भी कैसे तो मैं हूँ तू सो जा बस ये आप सो जाइए मैं जगूँ ऐसे बातचीत करते हुए और बाल्य की लीला का वर्णन करते हुए दोनों प्यार करते करते सवेरा हो गया प्यार हो गया इसी तरह से उनका स्नेह जीत था इतना स्नेह किसों का ब्रह्मा को न शंकर को न ये सब बात खंडित इसी चिंता इसमें रस इसलिए कहते हैं नेमं ग्रंथो शंकर जी को ऐसा कहा शंकर हनुमान ये ब्रह्मा जी आए तो कृष्ण का कुछ सख्त भाव था वो लीलाएं देखी वो लीलाएं भी इनको दिख नहीं पड़ी विस्तम्भ लीलाएं सख्त भाव की भी नहीं देख पड़ी उनको ये देख पड़ी जिसे इसमें से साथ इसमें निकल गया अब देखें अब क्या करता है बच्चनों को चोरी कर लें कर दिया अब देखेंगे ये क्या करते हैं और उन्होंने देखा समस्त जितनी लड़कियां थी उनकी कमलियां थी जितने बच्चे थे बछड़े थे वो सब कृष्ण बने सब पहले चतुर्भुज हो गए और चतुर्भुज के बाद में द्विभुज बन गए और उसके बाद में एक ही लड़का बस मुख सुखा हुआ अपने भी सब दूध और चावल और चावल और दही इसका कवल रखेंगे और मुख सुखा चारों तरफ में खोज रहे हैं बछड़े की घर गए और बस उनके चरणों में गिरने पर कहा बाल्य रस सखरस का भोग कहां किया कृष्ण इनके तरफ में देखा नहीं शंकर जी सुनते हैं कि आए गोपियों का भी शरीर बनाया किंतु गोपियों का रसा साधन ये नहीं कर सकते बाल लीला के समय भी आए गोकुल में गए बस दर्शन किया और ढोल झट मैया ने उनको छिपा मैया के अधिकार की बात है मैया चाहे तो दर्शन दे चाहे न हो और उनको छिपा दिया इसलिए उनको भी लक्ष्मी जी के साथ हुआ नहीं देवगंग में अभी अपनी तपस्या कर रही प्रभु कहे ही हो उत्तम यो उत्तम उत्तम किसको कहते हैं
उद्यम तमो जसमा देते उत्तम
नहीं श्रेष्ठ होता है ना श्रेष्ठतर नहीं श्रेष्ठतम को ही उत्तम कर उत्तर पहले नहीं सम
मध्य वैशिष्ट स्वर शब्द
तो यहाँ पर उत्तम कहा किंतु परम उत्तम नहीं कहा अभी उत्तम चल रहा इसीलिए उत्तम अयोध्या में बैकुंठ में तो है ही नहीं है और कहीं कहीं कुछ भी है थोड़ा सा जैसे अयोध्या में कुछ है अयोध्या में है आधा माना जाता है दशरथ वाला माना नहीं जाता है और कौशल्या वाला माना जाता है तो कौशल्या में भी कुछ ऐसा देखी भावना वो है ना चार भुजाओं का रूप देखा है प्रगट प्रकाला दयाला कौशल्या अधिकारी चतुर्भुज उपधारी हस्त तिजोरी और देखा कि चार हाथ हैं और फिर अस्तुति जोड़ दी यशोदा मैया अस्तुति करेंगी उनका मुंह में अंगली लगा करके ऐसे कर दे वो अस्तुति अस्तुति नहीं इसलिए मैंने राज से पूछा ये इससे भी उत्तम कुछ हो तो कहो उत्तम दाप में बतलाया अब उत्तम बतलाओ और भी उत्तम राय कहे कांत भाव प्रेम सात्विकता उन्होंने कहा सर्वसाध्य बदलाव का बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर शांत भाव को प्रेम साध्य भाव बदलाव, शांत भाव किसको कहते हैं? जगत में शांत भाव नहीं है, बस अपराजित राज्य में ही शांत भाव है। सेविकाएं हमारे ये कांत हैं, ऐसा भाव लेकर जब उनकी रसोमयी उपासना करती हैं, संबंधानुवाद से नहीं केवल समान कमात्मिका होकर, तब उसको कांत भाव कहा जाए। इसमें पहले बतलाए हुए समस्त जितने प्रकार की विशेषताएं हैं सब इसमें हैं, और अपना एक अलग से भी निष्ठा भी है, सेवा भावना भी है, और विगत संभ ऐश्वर्य भाव इत्यादि दूर कर प्रेममयी ममता भी उनमें है, लालन और सारण भी है, भर्षण भी है। यशोदा कितनी भर्त्सना करती है,
परिपूर्ण तो मात्रा
और गोपियों की भर्त्सनाएं परिपूर्णतम मात्रा में होती है। और इसके अतिरिक्त एक और भाव है जो किसी में नहीं, सर्वांग दिए करें सेवन, अपने समस्त अंगों और समस्त भावनाओं के द्वारा, उसमें भी अपना कोई स्वार्थ नहीं। इस भावना में, कांत भाव में आत्मा रमता से लेकर और अंत में पार्थिव मधुर भाव तक तक ये विस्तृत राज्य है। कहां से आरंभ हुआ है?
शांत
में आत्मा राम का जहां है वहां से लेकर और प्रेम की पाराकाष्ठा परकिया भाव जहां जिसमें महाभाव से आरंभ होकर के अधिरूढ़ जल इत्यादि मादन मोदन मोहन समस्त चरम सीमा तक वहां तक ये
व्याप्त
में पहले ही ये गोपियां होती हैं, ये पहले ब्रज के अतिरिक्त और कहीं नहीं होगा। कुछ आंशिक भाव आभास दूसरी जगह हो सकता है, इसलिए इस चीज को समझने के लिए आंख खोल करके कभी अच्छी तरह से देख सकते सुनो, क्योंकि यही काम आएगा। साधन में जो मिलेगा वही साध्य में मिले, साधन में अभी हम पढ़ते नहीं है उस वस्तु को, अध्ययन नहीं करते हैं, सीखेंगे नहीं, तो साध्यावस्था में कैसे मिलेगा?
हमने अभी नहीं जाना, सिद्धि से पाई।
यदि हम साधन में वकालत हमको पास करना है तो हमको साधन में क्या करना पड़ेगा? लॉ कॉलेज में भर्ती होना होगा ना, और उसको विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, तब तो वो सिद्धि में वो होगा। ऐसे ही साधन में हम जो कुछ सीखेंगे और जो कुछ करेंगे सिद्धि में बढ़ेंगे, और अभी हम उससे एलूप रहेंगे तो वो चीज हमको प्राप्त नहीं होगी। खूब ध्यान के साथ में सुनकर ये पांच प्रकार की दुकानों पर चीज हैं, पांच दुकानें लगी हुई अपने अपने सामर्थ्य से और गांठ के सामर्थ्य से, पैसे के सामर्थ्य से आदमी और उसी अनुसार में उन पांचों दुकानों में से किसी एक दुकान पर जाएगा, नाम देखेगा और जिधर भी उसकी रुचि हुई उसी दुकान में जाकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार में वस्तु को लेगा। तो इसलिए इसका वर्णन कर रहे हैं, इनमें से खरीदार है वो देखेगा कि हमारे गांठ में कितना पैसा है, अर्थात तू हमारी श्रद्धा किस किस्म की है, श्रद्धा के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। श्रद्धानुसार कनिष्ठ मध्यम उत्तम, किसी के ऊपर में निर्भर कर जिसकी जैसा श्रद्धा रहे उसी, यही मूल्य है उसका, उसी के अनुसार वो दुकान मिल जाए। जिसके गांठ में पैसे नहीं है वो सुनार की दुकान में जाएगा सोने चांदी के, और हीरा का व्यापारी हीरा की दुकान में वो जाएगा जिसको कुछ जरूरत नहीं। ऐसे ही इसको समझ लो, इसको तीन भागों में विभक्त करो। एक साधारण रति, सामान्य रति, सामान्य रति। एक होता है सामंजस्य रति और एक होती है समर्था। तीन प्रकार की रति, रति मैंने यहाँ पर क्या समझे, प्रेम, प्रेम मैंने हाई हाउस मन इसको
समझे।
इसमें भी अब हम कांत रस का विचार कर रहे हैं, कांत रस में ही विचार कर रहे हैं। इसलिए एक साधारण रति और जिसको सामान्य रति, और दूसरा हुआ सामंजस्य, और तीसरा हुआ जिसमें साधारण रति, रति किंतु है ये चीज को मत भूलो। साधारण वो जगत का काम नहीं है,
कृष्ण के प्रति रति है,
कृष्ण के प्रति रति है, कृष्ण के प्रति हो गई है, किंतु साधारण जगत का काम भोगों से युक्त होकर के सड़े गले लोहे के समाने जिसमें मुंह के चारों तरफ से पकड़ रखते, इसकी कोई बात नहीं है। ये तो अंत तक जहां तक हो जितना भी विशुद्ध होगा ये काम से परिपूर्ण है, और ये सदा ही दुखमायी दुखदायी होता है। जैसे जगत में नल दमयंती का प्रेम और
शास्त्री
सत्यवान का है, और किसका हमारे शास्त्री भी हैं, वो ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ ब्राह्मण और दत्तात्रेय और नहीं अनुसूया, ये सब प्रसिद्ध है। किंतु यहां तक सब काम है, अनुसूया जी का भी जब अत्रि ऋषि के प्रति उनका पति भाव है तब तक वो पतिव्रता नहीं है,
चरम पतिव्रता
नहीं है, उनको घूमना पड़ेगा। किंतु उनका यदि यह भाव हो कि अत्रि ऋषि हमारे गुरु हैं और उनकी कृपा से हम भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी, तब तो ये पातिव्रत धर्म के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अन्यथा अत्रि ऋषि के प्रति ये रहे कि हमारे पति हैं, तो भगवान जो परम पति उनको छोड़ करके अभी संसारी कभी स्थिति है, इसलिए वो पापी पक्ष धर्म, ठीक।
तो पार्वती के लिए क्या कहा जाएगा,
पार्वती जी का भी वैसे ही समझ, शिव जी को अपना गुरु मान करके और उनके माध्यम से नित्य लीला जो अष्ट काव्य लीला इत्यादि का जो चिंतन करती हैं, इसलिए हम लोगों की गुरुवर्ग। ये नवदरमयंती और सब
सारी सप्तवर्ण,
ये तो साधारण कोटि में, ये तो कोई गिनती में नहीं है, शास्त्रकारों ने इनको गिनती में नहीं रखा, ये संसार के चक्कर में ये घूम रहे हैं। इन लोगों को भी ये लोग तो बस पति लोग जाकर के वहां से फिर भ्रष्ट होकर के चले आए, बस यही सब, उनका अपने ज्ञान नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे जाए। इसलिए इन लोगों के लिए साधारणी रति नहीं हुई, रति जब होगी जब शुद्ध सत्व यहां पर प्रकटित होगा और वो कृष्ण भाव में विभावित होगी तब वो रति होगी। कुब्जा जब तक कृष्ण को नहीं देखा था तब तक उसकी प्रति उसकी रति स्वच्छ मानी जाए, स्वच्छ है। कृष्ण को देखते ही रति कुछ विभावित थी। कृष्ण ने उसको सुंदर बनाया। कंस के यहां इतना दिन तक सेवा करती थी किंतु किसी के प्रति उसकी लालसा नहीं हुई जो पति के रूप में हमारा या कोई किसी से प्रेम नाता संबंध ये सब कुछ नहीं। निर्लेप रूप में उनके सभा में जाती, उनको वो दे आती, चंदन इत्यादि तिलक लगा देती और भी लंगड़ी सुगड़ी सुगड़ी उसको भी कोई जरूरत नहीं। कृष्ण को देखा, कृष्ण उसको सुंदर बनाया। उस समय में उसकी साधारणी गति कृष्ण के प्रति विभाव साधारणी किस लिए कहा गया? जब तक उसमें संभोग की या कामी की इच्छा है बस वहीं तक वो रहेगी और जहां वो काम इच्छा कम हो गई है तो रति भी कम हो, अंत में शांत हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। कृष्ण को जब देखा तब तक उसमें हुई कृष्ण से मिली और कृष्ण जब चले गए ना तो फिर उस रति का कोई उल्लेख ही नहीं। बस इसलिए जब तक वो अभिलाषा रहती है तब तक वो उत्तेजित रहती है, कुछ मैंने काम करती है और इसके बाद में इच्छा बंद हो गई, शांत हो गई, बस उसके लिए न तो विरह होगा न कि स्थायी गति है, वो आकस्मिक उदित हुई और आकस्मिक, इसलिए इसको साधारण नहीं। किंतु रति है कृष्ण के प्रति और किसी के प्रति नहीं, अनन्य है, इसलिए इसको और रफी में ले लिया साधारण।
कुब्जा का और कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है कि वह एक ही बार
बस
इसके बाद में द्वारका मैंने बच्चा परिषद द्वारका में बताया तो उसने तो जरूर कुब्जा होगी।
इसीलिए उसकी जो प्रीति है बस साधारणी है, अटक समय की बस समाप्त हो और स्वार्थ समय है नहीं? प्रेम में जहां स्वार्थ है वहां पर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो रति नहीं कहलाएगी। इसलिए बस हम सकते अब सामंजस्य रति ये द्वारकापुर की महिषियों की रति है, उनकी रति है, शुद्ध रति भी हो गई है, स्थायी भाव भी है उनका, ऐसा नहीं कि अभी उदित हुई और फिर शांत हो गई, वो स्थायी है। और उसने कभी कभी कृष्ण से मिलने की इच्छा होती है किंतु मर्यादा से बंधी बंधी हुई रहती है, यही इसमें है। रति के मूल में कुछ स्वार्थ भोग की कामना, लोक मर्यादा और धर्म की सीमा पार नहीं कर सकती, इसलिए इसको समंजसता है। क्या लोक मर्यादा इनकी जो रति होती है लोक मर्यादा और धर्म की सीमा पार न हो जाए, बस धर्म की मर्यादा दोनों से बंधी हुई रहे, इसी के प्राचीर में बंद रहे, बस विवाह से उत्पन्न होती है, विवाह से उत्पन्न होती है, इसलिए विवाह की मर्यादा से ये बंधी रहती है, इसलिए ये समंजता है। जो साधारण रति है वो गाढ़ी कभी नहीं होगी और स्थायी नहीं होगी, उसका ये लक्षण है साधारणी का। क्या मतलब है?
स्थायी भी नहीं होगा, गाढ़ी भी नहीं होगी,
कभी गाढ़ी नहीं होगी और स्थायी भी नहीं होगी। और समंजसा वाली क्या है? स्थायी भी है और कुछ गाढ़ी भी हुई है किंतु घन नहीं है, घन माने बर्फ जैसा नहीं, वो दिखता है ना, हाँ विश्राम घाट में सबसे अच्छी मिठाई खुर्जा, अभी खूब ठंड नहीं हुई उसकी, अभी रबड़ी बनी है, उसमें कुछ कुछ अभी द्रवता है। ये लोक मर्यादा इसमें और विवाह के बंधन से मर्यादित नहीं होती, ये उसको पार करके एकदम जहां तक ये चली जा सकती है वहां तक ये चली जाए। गोपियों का ये समर्थ है, कृष्ण को वशीभूत करने में ये समर्थ है, उसमें समंजस होगी कि नहीं होगी और उसमें से एकदम है जो उसके वशीभूत
में साधारण में अपने संस्कृत की उपासना और समंजसा में स्वर्गतो भावना और समर्था में कोई सेवा समस्त सेवाओं को उल्लंघन करके
आप इसको उदाहरण दे के समझो। समस्त द्रव्यों में मणि श्रेष्ठ होती है, मणि है साधारण प्रेम साधारण व्यक्ति और चिंतामणि है समंजसा और कस्तुमणि माना गया गोपियों की समस्या। अब इसमें इसमें भी विचार किया गया, ये भी दो प्रकार की मधुर रस भी कांता भाव भी दो प्रकार की, किंतु लक्ष्य द्वारका नहीं है। कांताएं भी कही जाती है, ये एक ब्रज की कांता और एक पूरी की पूर्वों की कांता माने द्वारका पूरी, किंतु तो अभी विचार यदि किया जाए पार्थिया के अतिरिक्त और सब कांता नहीं चाहती स्वीय भाव मधु कहा तो जाता है किंतु यथार्थ में नहीं। अब वो स्वीय और स्वीय विवाह इत्यादि के द्वारा पतिभाव युक्त होकर के सेवा की भावना होती है, ये हुआ स्वकीय। और परकीय होता है दो प्रकार, एक कन्या का एक परोड़ा एक ही कन्या का माने अनूढ़ा और दूसरा हुआ
परोड़ा।
एक और भी इसमें है स्वकीय भी है ब्रज में, स्वकीय वह भाव है जो कृष्ण को पति के रूप में मानती हैं किंतु गांधर्व विवाह इत्यादि के द्वारा, जो कि कात्यायनी की पूजा करने वाली जो विशेष स्थिति हुई थी, जो कन्याकाएं थी पीछे से वो अपने को मानती हैं कि कृष्ण से हमारा विवाह हुआ गांधर्व विवाह। और परोढ़ा कौन सी है, ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि रूप मंजरी ये सब जो हैं ये परोढ़ा हैं, इनका दूसरी जगह में कृष्ण से विवाह न होकर के दूसरे से हुआ, ये यथार्थता हूं इस भाव में इसी को पर किया कर इसी में इनका लक्ष्य यही है, इसी में परिपूर्ण मात्रा में संपूर्ण रत्न में इसी के लिए ये बात किया। इसी के लिए आगे बतलाएंगे नायन सीओ अंग इसके लिए उदाहरण दे अपने कथन के, द्वारका वाले को छोड़ दिया साधारणी को भी छोड़ दिया और इसमें भी सखी को छोड़ दिया,
सखियों छोड़ दिया
सखियों को भी सखी माने उनको लेंगे
रोज मैंने कहता है
हाँ वो उनको ले लेंगे उनको लेते ले चले
पूर्व के सत्य को छोड़ दिया
है
पूर्व दर का पूरे संख्या छोड़ दी वो सबसे
यहाँ पर अनूढ़ा और प्रौढ़ा दोनों को लिया और उनको भी लिया लेकर के अब उसमें उदाहरण जो दे रहे हैं किंतु प्रिय नर्म शक्तियों के लिए दे रहे हैं और उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है उसके लिए दे रहे हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए दे रहे हैं उन गोपियों के लिए दे रहे हैं यहाँ पर सखी नहीं नित्य सखी भी नहीं है,
प्राण
सखी भी नहीं है, प्रिय और
प्रिय
किंतु वो लोग ही हैं, वो लोग ही हैं सभी। नायन सियो नितान करते प्रसाद सर्जोषिता नलिन गंध चांद अन्य रासो सवे अष्ट भुज दंड गृहित पंथ लब्धा श्रीशान जो गुजरात जो शोभा जी के प्रति कृपा का वर्णन पहले नेम ब्रह्मसोम इत्यादि ने किया, कथाओं के प्रति कृपा का ये वर्णन किया। अब यहाँ पर उन गोपियों की मधुर रस वाली शांता गोपियों का यहाँ पर चल रहा है। न अयम सीओ हे अंग हे प्रिय, ये कौन कह रहा है, ऐसा कौन कह रहा है, उद्धव जी उनकी महिमा वर्णन कर रहे हैं,
गोपियों की महिमा
वर्णन कर रहे हैं, उनके सामने महिमा वर्णन करते अखाते नहीं है। ये आशा महोच्चारण ऋण के पहले वाला इसका नायन सीओ अंग अपने आप गदगद होकर के उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये नायन प्रियो नितांत रते प्रसाद, नितांत रते जो लक्ष्मी जी हैं प्रिय प्रिय है ना, प्रिय
श्री
प्रिय
मैंने
बहुत यहाँ तक वैकुंठ में भी तीन लक्ष्मी
श्री भूदेवी
श्री
भू
लीला लीला शक्ति और
श्री
ये तीनों लक्ष्मी
शक्ति
और बतला रहे हैं पूर्व की महिलाएं हैं उनको भी लक्ष्मी कहा
जाता है।
उस प्रसाद को ये प्राप्त नहीं हो सकते लक्ष्मी नितान सरथे सब समय उनके अंगों की सेवा में निरत रहने वाली, चाहे वो पाए अपने यहाँ पर दस्तखत पर लेकर के पलोटे अथवा उनके वक्त पर विलास करते सब समय उनके अंगों में रत हैं, दस्तखल में दक्षिण रुमावली के रूप में या जिस रूप में लक्ष्मी जी को वो प्रसाद नहीं मिला। स्वर्ग जोशिता स्वर मैंने यहाँ पर वैकुंठ भी बतलाया और स्वर्ग मैंने स्वर्ग तो हरी है, स्वर्ग मैंने यहाँ पर वैकुंठ जोशिता वैकुंठ की जो लक्ष्मी है लक्ष्मी है नलिन बंध और ऊंचांग नलिन मैंने कमल नलिन गंध नलिन के समान गंध रूचान माने कांति उनमें सुगंध है कैसी उन लक्ष्मियों में कमल की और उनमें गंध तो है कमल जैसा और कांति कैसी है कमल जैसी कैसे कमल होता है सादा में मैंने कुछ गुलाबी भाव गुलाबी भाव अत्यंत सुंदर और कैसा कोमल कैसा कमल की भांति कोमल मृदु मनोहर सबको आकर्षित करने वाला और शक्ति आकर्षित हो रहा
कोमल के एक तो समुद्री एक फूल के द्वारा घूमने में जितना समय होता है
तो ये
कोमल होता है
ऐसा है लक्ष्मी ये लक्ष्मी है शांति उनसे अपने आप निकलती है। यहाँ तक तो सेंट इतर लगाना पड़ता है, वहाँ पर सेंट इतर की कोई जरूरत नहीं है, खुशबू अपने आप आती रहती है। जब उन्होंने ही कृष्ण की ऐसी कृपा को नहीं लाभ की तो किसो अन्य संसार की और दूसरी या देवताओं की दूसरी जो स्त्रियां अप्सराएं इत्यादि हैं इनकी तो बात ही क्या, उनको तो कैंसिल पहले ही कर दिया।
इसमें स्वर्गोषिता इसको भी लिया जा सकता है जो देवलोक में हमारे हयग्रीव हैं, बामन जी हैं और जिसमें अवतार हैं उनकी जो लक्ष्मी है उनकी रुचि है। इसमें हुआ पहला एक अन्य ये साधारण जो सुंदरी से सुंदरी स्त्रियां हैं जगत की, दूसरी देवताओं की स्त्रियां, तीसरी अस्पराएं, चौथी देव मतलब विष्णु की जो लक्ष्मियां और फिर नारायण के पास में रहने वाली लक्ष्मियां, इनको तो बात ही क्या, फिर वहां द्वारकापुरी की महिलाएं लक्ष्मियां, श्री सतमिंग पट्ट महेश प्रभु खेलती, लक्ष्मी जी से भी लाखों कोटि सुंदर और महिमा में ये पड़ी है कौन, सप्तभामा इत्यादि, उनको भी वो कृपा नहीं मिली कृष्ण की, क्या कृपा उसी के लिए बतला है। रातोत्सवे अश्च भुजदंड गृही सपंथ, रात के समय में नित्य करते 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 कृष्ण अधीर होकर के उनकी कृपा मांगते हुए कृपा की वंशा करते हैं और उनके गले में अपनी सुंदर सुगंधित सपाकृति बाहु को लगा, कहां ये उनके गले में डालेंगे, ऐसा ना कर करके कृष्ण ने ही उनकी कृपा के लिए ऐसा मांगा, ऐसा किया। और कहीं कहीं पर हमारे गोस्वामियों के श्लोकों में ऐसा है कि आप प्रति आप कृपा करें हमारे पर, अपरिपूरपी विद्या प्रसाद, विद्या की राधिका जो देवी है उनकी कटाक्ष की कृपा करने के लिए, कटाक्ष से भी कृपा करने इसके लिए अनुबंध हो करके मैंने व्रत धारण करके प्रतिदिन राधा कुंड में वास करते हुए स्नान करके उनके नाम का मंत्र जपते हैं, राधा कुंड
जगति हिमल नीरे तीर्थ रूपे प्रसस्ते समी क्षणमस्तराधे इसी विनय बदली प्रार्थना कृष्ण कृष्ण।
इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण कुमार, तुम हमें छोड़कर के मत जाना, इस भावना से लब्धाशीसान, लब्धाशीसान मैंने इस आशीष को लाभ किया कौन, गोपियों, और इसको दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, जिस कृष्ण ने जिस चीज की अभिलाषा की किस लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कृष्ण ने उस आशीष को उनसे प्राप्त किया, लब्धाशीषण इस कृष्ण जी कर सकते हैं, मनोरथ को पूर्ण कर दिया कृष्ण के मनोरथ को। इसी में सम्यक रूप में सार वासना कृष्ण की श्रृंखला के रूप में काम करती है, राशि सर्वोत्तम लीला है, संसार बद्ध श्रृंखला, संसार माने सम्यक रूप से सार जो है वासना,
प्रेम वासना
कृष्ण की, प्रेम को उनसे प्राप्त करेंगे गोपियों से, हमारी अभिलाषा पूर्ण हो इसलिए ये सम्यक रूप से सार वासना कृष्ण की है, उस वासना को पूर्ण कौन करती है, ये गोपियां करती है, इसलिए इसको संसार वासना कहा गया, इसलिए इसको कोई भी नहीं प्राप्त कर सका। फिर एक दूसरा उदाहरण देते हैं, इसलिए कहते हैं जैसे राधिका जी के सौंदर्य के लिए बदलाता है रूप गोस्वामी, सड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर मुख प्रभा परास्त कोटि सार बिंदु, उनका सड़ित सुवर्ण चंपक ये तीन प्रकार की उपमा, सड़ित राधा जी का अंग कैसा है, सड़ित के समान अत्यंत सुंदर तीर्थवर्ण है किंतु इसमें आग है, क्षणिक है,
जड़ है
और जड़ है, इसमें सुगंध नहीं है, इसलिए इसको बाईपास कर दिया। शरीर
सुवर्ण
सुवर्ण स्थिर है, वो जल्दी से विद्युत की भांति चमक करके नष्ट नहीं हो जाता है, तो स्थिर सिर्फ इसमें अपना कोई सुगंध नहीं है, जड़ भी
कोमलता नहीं है
और कोमलता भी नहीं है, मृदुता नहीं है, माधुर्य नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। अब तीसरा क्या आ है,
चंपक
पुष्प। चंपक कैसा होता है? चंपक देखा बड़ा पीला, बहुत सुंदर मृदु पीला और बहुत मधु गंध और सुंदर कोमल मृदु होता है और पीला भी होता है।
तो कुमार जो है
सब कुछ है किंतु है जड़, बस इसमें यही एक है जड़, किंतु इसमें समस्त कुछ है, इसलिए तीनों मिला करके भी पूरा नहीं कर सका, कोई समय ही नहीं इसके लिए है। चंपक इसलिए एक एक कह करके कि पूरा नहीं मिलता, वे कहते हैं तो उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है, फिर अंत में चंद्र को ले लिया। उनका मुखमंडल कैसा है? समान अत्यंत सुंदर, उसमें चेतनता भी है, चेतनता भी है, हस्तप्रद भी है, उसमें सब कुछ है, उसमें अमृत भी है, इसलिए उस थोड़ी सी क्षमता का किंतु वो भी पूर्ण क्षमता नहीं कर सकता। तासाम आदिभूत सौरे सौरी स्वयमान मुखाम्बुजा सीतांबर धर करली साक्षात मनमथ। इस रूप को देखने का किसी को अधिकार नहीं है, न द्वारका वाली को, न वैकुंठ वाली को, ये सब जीतती हैं, किसी को अधिकार नहीं। ये रूप कौन देखेगा? मनमन मनमथा केवल गोपियां ही दर्शन, और कोई दर्शन नहीं है, नहीं अधिकार। जिसका अंदर में प्रेम सर्वोच्च स्थिति में असीम रूप से वर्तमान हो, जिसमें महाभाव से आरंभ करके ऊपर वाला स्थित हो, वो लोग इस रूप को दर्शन कर सकते हैं और ये प्रकट ही नहीं करेंगे। एक व्यापारी है कपड़े का, जब दुकान में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया हमको एक साड़ी दिखलाओ, तो वो पहले घटिया चीज हमको दिखलाएगा और पांच लाइट जला देगा, चक 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 करते हैं, और कहेगा कि यहाँ से ये हमने मंगाया बंबई की है, कोई कहेगा ना लाती है, कोई लिवरपूल से दिखलाएगा, पसंद अच्छा और बाकी यही तक नहीं हमारे पास, और तो और एक दिखलाया, फिर एक और दिखलाया, अंत में दिखलाता दिखलाता जब भी उसे अंतिम दिखला दिए ना तब से मन नहीं भरता, तो पुरानी वाली का सबसे देख लेगा। ये कहा गया कि ये सबसे अधिक श्रेष्ठ है पुरानी वाली, और किसी न किसी प्रकार से उसका मन बजाकर और फंसाने की चेता फंसाई देगा प्राय जब चतुर्थ होगा। एक एक करके उद्धव जी को ब्रज में भेजा, उद्धव जी गोपियों को संवाद दे रहे हैं, पहले घटिया संदेश कहा, इसके बाद में बढ़िया संदेश कहा, उसके बाद में उससे भी अच्छा था, गोपियों को कोई भी मन नहीं भाया। अंत में कहा जी हमारे पास में कृष्ण के बहुत से संदेश हैं, अच्छा आप सुनिए। तो इसी तरह से करता, तो उसी तरह से यहां पर ये सबसे जो सुंदर अंतिम रूप जो मनमत मनमत है, ये गोपियों के लिए भी केवल संभव, दूसरों के लिए वो दर्शन। कितना बजा?
सवा
सात। तो ताका मादि भूत सौरी, सौरी किस लिए कहा? गोपियां ये सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध है कृष्ण पर,
लेकर कह रहे हैं
गोपियों के पक्षधर है ना, कि गोपियों को इतना तरसाया और इतना भ्रमाया इनको व्याकुल कर दिया है, न घात घर का रखा न घात का, और इतना रुलाया इसलिए इनका मन बड़ा खराब हो गया। कहते सुनो भाई ये तुम बड़े निर्मित, ये छपरी कुल में जन्म लेने से ही ऐसा हो सकता है, इसलिए निश्चित में तुम फौरी पुत्र है, इसलिए कठोरता के लिए उनको कुछ क्रोध हो गया, राग हुआ, और राग होकर के सब उन्होंने ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग किया। तुम ब्रज के नंद नंदन नहीं हो, तुम यशोदा नंदन नहीं हो सकते। यशोदा तो बड़ी प्रेम से थी रहते हैं, वो बड़ी दयालु है, नंद बाबा बड़े दयालु, इसलिए कभी भी आप गोपुत्र गोपेंद्र नंदन कभी नहीं हो सकते, आप निश्चित ही सौरी। सब सौरी जी ने क्या किया, ताका मापी भूल, कुछ लज्जित से होते हुए, कुछ मुस्कुराते से होते हुए, मानो मेरी गलती हो गई, मेरी इस गलती को तुम लोग दिव्य सुंदर धारण किया जो भी आज तक कभी नहीं किया। मनमत को भी मनमत करने वाले ऐसे रूप, मैं मान मुख अंबुज है किंतु कैसा है वो, मैं मान
लज्जा
लज्जा अब सूख रहा है, फूल
खिल रहा है,
अभी खिल रहा, पूरा खिला नहीं, अभी कली से थोड़ा सा भी संकुचित किंतु